भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे, मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित रखने के लिए है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्था में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। ओम अज्ञानस्य जतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे।
स्वकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता का जो ज्ञान है उसका उपसंहार कर रहे हैं, निष्कर्ष फिर से अर्जुन को दोहरा रहे हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान और तप किसी भी अवस्था में उसको त्यागना नहीं चाहिए। और जो महात्मा है यानी कि शुद्ध है ऐसे लोग भी दान तप और यज्ञ करने से और शुद्ध बन जाते हैं। तो हम देखते हैं ये जो भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति के साथ भगवान के भक्त बनना, उनकी ही पूजा करना, उनको ही सब कुछ अर्पण करना, ये गीता का सार है, गीता का निष्कर्ष है। मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुर। परंतु साथ साथ श्री कृष्ण हमें एक संस्कृति भी देते हैं। अगर किसी को सुसंस्कृत बनना हो तो उसके लिए संस्कृति चाहिए, तभी उसे सिविलाइज्ड शब्द कहा जाता है। अगर उसमें अच्छे आचरण नहीं हो फिर वो कितना ही ढोंग क्यों न करे धर्म का, वो केवल धार्मिक बन जाता है, वो धार्मिक नहीं बनता। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सूक्ष्म संवेदनशील संस्कृति के बारे में भी वर्णन करते हैं, और यही वैदिक संस्कृति का लक्षण है। वैदिक संस्कृति और भोग के असंस्कृति में अंतर क्या है कि हर एक वस्तु इस भौतिक जगत में है वो पूर्ण है, पूर्ण से आया हुआ है। ओम पूर्णम अदब पूर्ण पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। तो क्योंकि वो पूर्ण से आया हुआ है तो इसलिए अगर हम उसको साधारण वस्तु करके समझेंगे तो उसका हम भोग करने के लिए प्रयास करेंगे। अंतर क्या वैदिक संस्कृति में, जैसे कि कल लोगों ने दशहरा मनाया और वैष्णव लोग आज दशहरा मनाते हैं, और दशहरा के समय लोग आयुधों की पूजा करते हैं। जब बाहर के लोग पाश्चात्य देश के लोग देख रहे थे कि भारतीय लोग कितने हैं असंस्कृत हैं, भगवान के रूप में वो आयुधों का भी पूजा कर रहे हैं। देखो सबको भगवान मानते हैं, पत्थर को, यंत्र को, गाय को, बंदर को, ये देखिए कितना असभ्य लोग हैं। और भारतीय लोग दुर्भाग्यवश इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाते थे, परंतु हमारे संस्कृति में है। अंतर क्या है, जब हर एक वस्तु में हम जब चेतना को देखते हैं तब हम बहुत संवेदनशील बन जाते हैं, उसका हम दुरुपयोग नहीं करना चाहते, उसके प्रति हम अत्याचार नहीं करना चाहते। परंतु जब हर एक वस्तु को और हर चेतना युक्त जीव को जब वस्तु के रूप में देखा जाता है फिर उसकी भोग की इच्छा हो जाती है। यानी कि आध्यात्मिक संस्कृति वैदिक संस्कृति क्या कहती है, वस्तु में भी चेतना को देखने का प्रयास करो ताकि उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। और भोगवाद क्या कहता है कि जो चेतना युक्त है उसको भी वस्तु के रूप में देखो। जो लोग कहते हैं वैज्ञानिक प्रगतिशील लोग हैं वो कहते हैं कि सब कुछ मैटर से आता है, मैटर यानी कि जो पदार्थ है उनसे आते हैं, भूमिर अपो नलो वायु, सब कुछ ये जो सृष्टि हम देखते हैं वो कहते हैं वैज्ञानिक लोग हैं, सब कुछ कहां से आया हुआ है, इन पदार्थों से आया हुआ है, जड़ वस्तुओं से चेतना वस्तु आती है, ये कोई विज्ञान नहीं है, ये उनका दृष्टिकोण है, ये विकृत भावनाएं है। जब आप चेतना में वस्तुओं को देखते हो तुरंत आपको भोग करने की इच्छा हो जाती है, परंतु जब पदार्थों में चेतनाओं को देखते हो तब उसका दुरुपयोग नहीं करते हो। श्रील प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में प्रचार करने के लिए गए थे उनके पास छोटा सा टाइपराइटर था, और उनके शिष्य नवसकिया थे, अभी अभी आए हुए थे, वे प्रभुपाद जी से भक्ति के बारे में सीख रहे थे। प्रभुपाद जी बता रहे थे किस प्रकार से भगवान को देखना चाहिए, और प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा जो टाइपराइटर है उसको आप अंदर रखो, उन्होंने क्या किया, अपने पैर से उसको अंदर दबा दिया. प्रभुपाद ने कहा नहीं, दिस इज ऑल्सो कृष्ण, ये भी कृष्ण है. तो अचंभे रह गए, ये भी कृष्ण है. तो प्रभुपाद ने सिद्धांत सिखाया, जो कोई वस्तु भगवान के उपयोग में हम लाते हैं उसको निर्जीव नहीं देखना चाहिए, उसको भगवान से संबंध में देखना चाहिए. और इसलिए हम देखते हैं, क्योंकि जब चेतना को नहीं देखते, भगवान को नहीं देखते हैं, तब लोग दूसरे लोगों को किस प्रकार से देखते हैं, उनको यंत्र के समान देखते हैं. जिस समय जो पाश्चात्य देशों में यांत्रिक क्रांति हो रही थी, बड़े बड़े कारखाने खुलने लगे और लोग अपने खेतीबाड़ी छोड़कर उस कारखानों में काम करने के लिए आते थे, फिर वहां के मालिक उन लोगों को लोग के रूप में नहीं देख रहे थे. वो कहते थे कि हमको 500 हाथ चाहिए काम करने के लिए. और जब उनके हाथ को कुछ चोट लग जाता तो कहते थे दो हाथ अब उपयोग नहीं है, उनको फैक्ट्री के दीवारों से बाहर फेंक कर फिर दो दूसरे हाथों को देखना. उनको व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया बल्कि केवल हाथ के रूप से उनको गिना जाता था. वैसे ही उन्होंने कहा पेड़ में जीव नहीं है, प्राणियों में जीव नहीं है. इतना तक हो गया कि वो कहने लगे जो स्त्रियां है उनमें भी आत्मा नहीं है. देखिए ये अंतर है आध्यात्मिक संस्कृति और भोगवाद के संस्कृति में. तो यहां जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कभी कभी अपने आप को भक्त कहना बहुत आसान है. तिलक लगा लिया, माला फेर लिया और हरि बोल करके खोद लिया, बहुत आसान है करना. परंतु अगर उसके साथ संस्कृति नहीं होगी, भक्ति की संस्कृति नहीं होगी, तो फिर हम भक्त केवल नाम के हो जाते हैं. जिस समय युधिष्ठिर महाराज उनके पिताजी एक यक्ष के रूप में उनकी परीक्षा कर रहे थे, उनको अलग अलग प्रश्न कर रहे थे, उसमें एक प्रश्न होता है कि ब्राह्मण कौन है, युधिष्ठिर महाराज अब इसका उत्तर दो. तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, वो कहने लगे जो शास्त्रों को जानते हो ब्राह्मण नहीं है, जो मंत्रों का यंत्र के समान बोलते हो ब्राह्मण नहीं है, परंतु जिसमें सदाचार हो वही ब्राह्मण है. श्री श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो आंदोलन है ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये सांस्कृतिक संस्था है. इट इज नॉट अ रिलीजियस मूवमेंट बट अ कल्चरल मूवमेंट, यानी कि जहां लोग सुसंस्कृत बन जाते हैं. जिस समय दान की बात आ रही है, हम दान के बारे में चर्चा करेंगे. लोग दान देने के लिए विलाप करते हैं कलयुग में. दान देने से बहुत सारा उपाय सोचते कि कैसे दान देने से बच जाओ, धर्म के लिए हो या सरकार के लिए हो या अपने परिवार के लोगों के लिए भी हो, दान देने से विलाप करते हैं. जिस समय युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर या पूरे इस पृथ्वी के राजा थे, दुर्योधन आदि उनके प्रति ईर्ष्या किया करते थे और जुआ खेलकर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडवों को क्या कर दिया, उनको कंगाल बना दिया, वो कंगाल हो गए और उनको वनवास के लिए भेज दिया गया. और जिस समय युधिष्ठिर महाराज वनवास के लिए जा रहे थे विलाप करने लगे. किस बात के विलाप कर रहे थे, विलाप इसीलिए नहीं कर रहे थे कि मेरा राज्य खो गया, अभी मुझे वनवास में रहना होगा, बल्कि विलाप इसीलिए कर रहे थे कि मैं गृहस्थ हूं, एक क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का धर्म क्या है, दान देना लोगों को. तो युधिष्ठिर महाराज विलाप करने लगते कि अब मेरे पीछे इतने सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, वैष्णवगण आ रहे हैं और उनका जतन करने के लिए, उनका पालन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उनको कुछ खिला नहीं सकता, उनको कुछ पिला नहीं सकता हूं, उनके यज्ञ के लिए मैं प्रोत्साहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए विलाप करने लगते, रोने लगते. देखो मेरी गति क्या हो गई, दान नहीं दे रहा हूं मैं। राज्य खोने का दुख से बढ़कर किसका दुख था कि मैं दूसरों को कुछ दान नहीं दे सकता हूं। देखो कितना अंतर है। और वो विलाप करते हैं बारी बारी में, और ब्राह्मण लोग उनको समझाते हैं, आप इसकी चिंता मत करो, आप दान न देने पर भी हम आपके साथ ही रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं उससे और मेरा दुख बढ़ जाएगा। एक तो अगर आप मेरे साथ में नहीं रहोगे तो दुख होगा, अगर आप मेरे साथ में रहोगे और मैं आपको फैला नहीं सकता हूं, खिला नहीं सकता हूं, तो और मेरा दुख बढ़ेगा। और इनके वेदनाओं को देखकर, इनके विलापों को देखकर एक ब्राह्मण वहां के, वो कहते आप सूर्य की उपासना करो, वो आपको अक्षय पात्र प्रदान करेंगे, जिससे कि आप अक्षय रूप से जितना चाहिए उतना ब्राह्मण को खिला सकते हो, जितना चाहिए उतना साधुओं को खिला सकते हो। राज्य से बढ़कर जंगल में ज्यादा साधु रहते हैं, तो वहां आपको खिलाने के लिए क्या चाहिए, अक्षय पात्र चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज को उस सेवा को पूरा करने के लिए सूर्य की पूजा करते हैं और उनसे एक अक्षय पात्र स्वीकार करते हैं, और उनके पास अक्षय पात्र आ जाता है। देखिए जब देवताओं के पास से जो भेंट आती हो उसके साथ कोई कंडीशन रहता है, शर्त होता है, तो सूर्य ने क्या कहा कि ये जो पात्र है इसमें जितने चाहे उतने ब्राह्मणों को खिला सकते हो, परंतु जब तक द्रौपदी खाएगी नहीं तब तक, जैसे द्रौपदी इस पात्र से अन्न ग्रहण करेगी उस दिन के लिए पात्र क्षय बन जाएगा, उसका कोई काम में नहीं आएगा, उसको प्राप्त कर लिया। और ये तो बहुत नजदीक में निवास किया करते थे काम्य वन में, और दुर्योधन हमेशा देखो राज्य प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी वो हमेशा पांडवों से डरता रहता था, फिर भी सोच रहा उनके पास क्या है, यानी कि राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, उनको पूरा कंगाल बना दिया, फिर भी सोच रहा था उनके पास कुछ न कुछ होगा। और समझ में आ गया कि युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ न होने पर भी मेरे से ज्यादा साधु लोगों को, ब्राह्मण लोगों को खिलाते हैं, फिर ईर्ष्या बढ़ गई। ईर्ष्या बढ़ती नहीं है, ईर्ष्या पहले से अंदर होती है, उसको हम विकसित करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए श्रवणादि चित्त शुद्ध करिए उदय। परंतु जब उस संस्कृति में आ जाते तो क्या होता है, कृष्ण भावना प्रकाशित हो जाता है। वैसे द्वेष, ऐसे नहीं कि दूसरे के घर में बहुत बड़ा टेलीविजन है इसलिए मैं उसके प्रति द्वेष कर रहा हूं, पहले से ही वो द्वेष है, उसको देखकर वो प्रकट हो जाता है। वैसे दुर्योधन को राज्य प्राप्त होने से कोई वो भक्त नहीं बना, द्वेष पहले से ही था, और जैसे अक्षय पात्र को देखा और उसकी ईर्ष्या बढ़ने लगी, और उसके भाग्य जैसे खुलते हैं वैसे वो सोचकर उनके पास दुर्वास मुनि आ गए, और दुर्वास मुनि को देखकर दुर्योधन सोचने लगे इनकी बहुत सुंदरता से सेवा करनी चाहिए, उनको नम्रता से सेवा करेंगे, उनको बहुत प्रसन्न करेंगे। देखिए कभी कभी साधुओं की लोग सेवा करते हैं, लोग भगवान के पास आते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन अगर उद्देश्य ठीक न हो, पहले से कुछ गलत धारणाएं हैं सेवा करने के लिए, फिर सेवा करने से कोई लाभ नहीं होता। और दुर्वास मुनि को प्रसन्न करना इतना कठिन था, प्रायश सब लोग दुर्वास मुनि के सेवा में लगकर उनसे केवल शाप ही स्वीकार किया करते थे, क्योंकि दुर्वास मुनि बहुत चंचल थे, उनका ऐसा व्यवहार था अकेले कभी नहीं आते थे। सोचो आपके घर में 10,000 साधु आ गए और उनके जो गुरु है क्रोधी है, चंचल है, और अपने निर्धारों को बदलते रहते बार बार, और गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है, फिर भी आपको शाप देंगे, क्या ऐसे
साधुओं को आप स्वीकार करोगे, आप अपने बच्चों को बोलोगे बाहर से लॉक लगाकर तुम भाग जाओ, ऐसे साधु ना आने से अच्छा है, उनको लगना चाहिए कि हमारे घर में कोई है नहीं। तो दुर्वास मुनि आगे दुर्योधन के पास 10,000 शिष्यों के साथ, और वर्णन किया गया महाभारत में उनका स्वभाव क्या था। वो कहते थे कि अभी मुझे भोजन खिला, और एक केले ने 10,000 लोगों के लिए, जब भोजन पूरा बन जाता होता था अभी नहीं खाना है, और रात के 12 बजे फिर से आते थे, उठाकर सबको कहते थे अभी भूख लगी है मुझे कुछ खिलाओ, रात के 12 बजे। और आप जब उनको परोसते होते हैं, परोसने के बाद वो कहते थे खाना ठीक नहीं, खाने के पहले समझ जाते थे कि ठीक नहीं, ठीक होने पर भी, और उठकर चले जाते थे और अचानक फिर से आ जाते थे। ऐसे अतिथियों की सेवा करना बहुत कठिन है, परंतु दुर्योधन की इच्छा अलग हेतु होने के कारण इतने निर्धार के साथ वो दुर्वास की सेवा करते हैं और एक भी गलती नहीं करते। दुर्योधन बहुत होशियार था, वो जानता था किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए अगर उसका उद्देश्य पूरा होना हो, और उन्होंने खूब सेवा की एक महीने तक। और दुर्वास मुनि उनसे प्रसन्न हो गए, उन्होंने पूछा आप बताओ आपके लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा देखो मुनिवर्य, मेरे बड़े भाई भ्रातराश्री युधिष्ठिर महाराज यहाँ काम्यवन में निवास करते हैं, देखो कितनी दुर्बुद्धि है, उनके पास सब जाना जब द्रौपदी अपने अन्न को ग्रहण कर लिया है, उसी समय जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाकर उनसे अब अन्न की भिक्षा करना, यही मुझे प्रसन्न करेगा। देखो कितनी दुर्बुद्धि है, उनसे मांग सकते थे मुझे मुझे शुद्ध भक्ति दो, मेरा ईर्षा निकाल दो, मेरा द्वेष निकाल दो, ऐसे उन्होंने वरदान प्राप्त नहीं किया, बल्कि जाकर उनको सर्वनाश करो। इसके विपरीत युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष के सामने, यक्ष उनसे जब प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे यक्ष पूछते कि आपको मैं क्या वरदान दूं, युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, बोले हे धर्मराज मेरे क्रोध लोभ और मोह इसको नाश कर दो। धर्मराज यक्ष ने कहा आप तो इसके मूर्तिमान हो, आप में तो गुण दिखाई नहीं देते, इन गुण न होने पर भी युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना कर रहे थे इनसे मुझे दूर रहो, परंतु दुर्योधन क्या कह रहा था कि जाकर उनका नाश करो। दुर्वास मुनि ने कहा तो तास्तु, और जैसे बाहर जाने लगे फिर त्रिकुट तीन जो खलनायक थे महाभारत के, दुर्योधन कर्ण और शकुनी, और दुर्भाग्यवश ऐसे खलनायक अगर देखा जाए महाभारत में सबसे बड़ा खलनायक कर्ण है, क्योंकि सबको दिखने में बड़ा धर्मदायी दिखाई देता था, लेकिन ऐसे वचनों को ऐसे उपदेशों को दुर्योधन को दिया करता था, और हाथ में हाथ मिलाकर हंसने लगते हैं। और कर्ण कहता है कि दुर्योधन जितने कितने साल से अब सोच रहे थे कि पांडवों की दुर्गति होनी चाहिए, आज ही दिन आया है, दुर्वास के क्रोध के कारण, उनके क्रोधाग्नि के कारण वो शपिस्त, उनको शाप दिया जाएगा और हमेशा के लिए वो नरक के भागी बन जाएंगे, परंतु सूर्य से बढ़कर भगवान श्री कृष्ण। और जिस समय दुर्वास मुनि जाते हैं, जब द्रौपदी ने खाया हुआ है, और जाकर युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि युधिष्ठिर हमें भोजन लेना है, हम जमुना में जाकर गोता लगाकर आएंगे हमारे 10,000 शिष्यों के साथ, तब तक का भोजन तैयार रखना, ऐसे कहकर चले गए। और युधिष्ठिर महाराज तो खुद तो भोजन नहीं बनाते थे, उनको तो ऑर्डर देना है, उन्होंने अंदर से बाहर से कहा द्रौपदी को कि दुर्वास मुनि आ रहे तो उनके लिए 10,000 शिष्यों के साथ भोजन तैयार करो। तो द्रौपदी विलाप करने लगती है अब कहां से मैं खिलाऊंगी, ये अक्षय पत्र क्या हो गया है, ये तो क्षय हो गया है, कल तक उनको नहीं खिला पाऊंगी, और रोने लगती है, विलाप करने लगती है। वो जानते हैं कि अगर दुर्वास को नहीं खिलाओ तो सबको शाप मिलेगा, और उस अवस्था में
वो क्रंदन करने लगती है। आत्मा के जो आत्मा है, सर्वभूत के जो स्वामी है, वैसे भगवान कृष्ण को पुकारने लगते कि आप आकर हमें इस अवस्था से बचाओ। और वहां द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के साथ वो विहार कर रहे थे, अचानक खड़े हो गए और यहां काम्य वन में आ गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि मुझे कुछ खिलाओ। अब दुर्वास मुनि को न खिलाने एक दुख था, और उससे बढ़कर जब भगवान मांग रहे कुछ और उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है और रोने लगती है। एक तो दुर्वास मुनि को नहीं खिलाओ, उनसे शाप भी मिल जाए, उतना दुख नहीं है, परंतु आपको नहीं खिलाना जब आप मांग रहे हो। दुर्योधन को भगवान एक बार कहते कि देखो दुर्योधन, दुर्योधन उनको पूछते जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत पर बनकर आए थे, तब दुर्योधन को छोड़कर वो विदुर के घर में गए और वहां उन्होंने क्या खाया, केले का छिलका। कोई कहता कि रुखी साक उन्होंने खाई, कोई कहता कि केले का छिलका खाया। तो दुर्योधन ने पूछा मैं तो 56 भोग बनाया था, विदुर के दासी पुत्र के घर में आपको क्या मिला, आपने क्यों नहीं खाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो दुर्योधन, अगर किसी को भूख लगी हो और या किसी से प्रेम हो, ये दो कारण के लिए लोग खाते हैं। न तो मेरे को भूख लगी थी और न तो मेरा आपके प्रति कोई प्रेम है, इसलिए मैं क्यों खाऊं? क्योंकि मुझे विदुर के प्रति प्रेम था, प्रेम के कारण अपने आप भूख लग गया। और मैं तो एक शांति दूत हूं, जब तक दूत का काम नहीं होता उसको खाना नहीं चाहिए। और आपके हाथ का बनाया हुआ जो भोजन है, वो विष है, उसको विष खाने से मुझे अच्छा नहीं होगा और जो परोसने वाले हैं उनकी भी अच्छी गति नहीं होगी। तो भगवान उसको बड़े कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो द्रौपदी यहां देख रही कि भगवान मांग रहे परंतु देने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवान कहते नहीं वो पात्र लाओ, वो कहते नहीं मैंने साफ करके रखा है, नहीं मुझे चाहिए उसको दो। और जब द्रौपदी पात्र देती है, भगवान अपने सूक्ष्म दृष्टि से वो देखते हैं, वहां उसके अंदर एक कण साग होता है, उसको लेकर इतने संतुष्ट हो जाते हैं, वे खाकर कहते कि मेरा मन पूरा संतुष्ट हो गया। और यहां जो गोता लगे लगाकर ध्यान में लगे हुए थे सारे जो ऋषिगण, उनको ढेकार आने लगते जोर जोर से, 56 भोग का वो स्वाद करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि पानी में डूब जाएंगे, इतना पेट भर गया है, वो हिल नहीं सकते। सारे ब्राह्मण दुर्वास मुनि को कहते कि अब कैसे खाएंगे विष्णु महाराज का भोजन, हमको हिलने नहीं हो रहा है। और बार बार उनके मुंह से वो ढकार आने लगता है, बोल नहीं सकते वो लोग। और दुर्वास मुनि कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैं भी एक अन्न ग्रहण नहीं कर सकूंगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने भीम को भेजा, जाओ अब उसको ले आओ, उनको ले आ लेकर आओ। और जब भीम, महाभारत में कहा गया है सहदेव गए, भीम हो या सहदेव, दोनों जब जा रहे थे, उसके पहले दुर्वास मुनि सोचने लगे अगर हम जाकर कुछ अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा। वो कहते मैं जानता हूं हरि भक्त कैसे होते हैं। वो कहते हरि भक्त के सामने अगर हम कुछ खेल करेंगे, मतलब जब युधिष्ठिर महाराज क्रोध से मेरे ऊपर नजर डालेंगे, मैं और मेरे सारे शिष्यों के प्रति, वो जैसे कपास का जो पर्वत होता है उसके ऊपर अगर एक चिंगारी, अग्नि की चिंगारी आती है तो क्या होता है, वो चिंगारी भी हो तो कपास के पर्वत को जला देता है। हम लोग कपास के समान हैं और युधिष्ठिर महाराज भक्ति के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। अगर उनकी कोप की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम सब भस्म होकर चल जाएंगे। मैं जानता हूं अम्बरीश महाराज के साथ मैंने खेल किया था, इसके कारण वहां नजदीक नहीं जाना है, तो इस पार आने के पहले उस पार जाकर वहां से हम भाग जाएंगे। तो दुर्वास मुनि अपने सारे 10,000 शिष्यों के साथ वहां से वहां चले जाते हैं। और यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि भगवान ने भेज दिया उनको बुलाने के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। वो चिंतित हो जाते हैं लेकिन कोई नहीं आता। उसके पहले भगवान कहते हैं द्रौपदी और युधिष्ठिर आप चिंता न करना, दुर्वासा मुनि यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। फिर वो जानते थे 12 बजे आ गए तो रात के, तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ वापिस नहीं आएंगे। और जब युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बचाया, उनको बचाया, तो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। वो कहते कि हे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण, हम आपको ऐसा आशीर्वाद देते कि आप हमेशा अपने भक्तों की ऐसी रक्षा करते रहो। देखो भक्त प्रेम के कारण भगवान को भी अपना आशीर्वाद देते हैं। तो यहां हम देखते हैं जो देवी देवताओं की उपासना करने से युधिष्ठिर महाराज ने कुछ खास प्रयास नहीं किया, केवल दान देने के लिए कि दान देना चाहिए, लोगों को पालन करना चाहिए, उनका रक्षा करना चाहिए, इसके लिए वे सूर्य के पास गए, उनसे अक्षय पात्र मांग लिया। लेकिन वो पात्र दूसरों का ईर्ष्या का कारण बन गया। परंतु जब कोई खतरा या धोखा की स्थिति आती हो जिसमें कोई बचा नहीं सकता, तो स्वाभाविक रूप से उनको कृष्ण का ही चिंतन हुआ करता था। और जब कृष्ण आ गए वो अक्षय पात्र से ही अक्षय है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा करता हो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, जो कृष्ण की सेवा करता हो वो सेवा करने का जो लाभ है वो अक्षय है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो कभी रुकता नहीं है, उसका जो लाभ है उसका जो परिणाम है वो हमेशा के लिए रह जाता है। और उसके साथ साथ कोई जो कृष्ण के भक्त बन जाते हैं और भगवान से उन्हें कुछ भेंट मिलती है उसे कोई द्वेष नहीं कर सकता। हाल ही में वामन देव का जन्म दिवस हमने मनाया था और उसमें हम देखते हैं जिस समय बलि महाराज जब वामन देव को देने के लिए तैयार हो जाते तब क्या हो गया, शुक्राचार्य जो कर्मठ ब्राह्मण थे केवल दक्षिणा के लिए ब्राह्मण थे, पूजा पाठ वगैरह किसके कारण बोलते थे, सब पूजा किस प्रकार से करना चाहिए कैसा होना चाहिए वो शास्त्र के ऊपर नहीं बल्कि दक्षिणा कैसे मिलेगा उसके ऊपर, पूजा पाठ किसके ऊपर निर्भर करता था कितना दक्षिणा आएगा। तो जब वामन देव को देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शुक्राचार्य ने कहा मत दो, इनको देने से क्या होगा आपकी हानि हो जाएगी, सब कुछ वो हरण कर लेंगे क्योंकि ये हरि है, हरि होने के नाते आपका सब कुछ हरण कर लेंगे। और अलग अलग कहते देखो आपने ओम नहीं कहा है तो इसमें ये गलती है, ओम न कहने के कारण आपने जो देने का वादा या वचन लिया है वो ठीक नहीं है, तो अपने वचन को वापस ले सकते हो। तो बलि महाराज सोचकर कहते एक तो मैं पहला प्रहलाद महाराज से संबंधित हूं तो कैसे मैं नहीं कह सकता हूं, और दूसरा मैं सब चीजों के प्रति किसी चीज के प्रति मैं डरता नहीं हूं, परंतु वचन जो दिया है उसको मैं वापस नहीं ले सकता, मुझे दान देना ही है। तो शुक्राचार्य को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उन्होंने कहा तू शिष्य होकर मुझे सिखाता है तो मैं तुझे शाप देता हूं कि सब कुछ तेरा नाश हो जाए। तो वैसे ही हो गया, बलि महाराज सब कुछ खो बैठे, वामन देव ने सब कुछ हरण कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो बलि महाराज ने खोया वो किसने दिया हुआ था, वो भगवान के अंतरंग शक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ था, वो बहिरंग शक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ था। जो बहिरंग शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है वो दूसरों को द्वेष दिलाता है, इंद्र क्रोधित हो गए, इंद्र में द्वेष आ गया, इसलिए इंद्र ने वामन देव को कहा था कि ब्राह्मण के रूप में आओ। लेकिन जो भगवान के अंतरंग शक्ति के द्वारा जो प्राप्त होता है उसके प्रति कोई द्वेष नहीं कर सकता। और जब बलि महाराज को भगवान श्री वामन देव संतुष्ट होकर उनको सूतल लोक का राजा बनाते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, इंद्र भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसको अपना राज्य मिल गया। और जब सूतल लोक के राजा बनाने के उपरांत भगवान श्री वामन देव शुक्राचार्य से प्रश्न करते हैं, हे शुक्राचार्य बताओ कि इस बलि महाराज के यज्ञ में क्या दोष था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जो शुक्राचार्य बहुत सारे दोष देख रहे थे, उन्होंने बलि महाराज को शाप दिया था, तेरा सर्वनाश हो जाए। भगवान विष्णु ने उनसे प्रश्न पूछा कि बताओ शुक्राचार्य इसमें क्या दोष था। देखिए भक्ति का प्रभाव क्या है। शुक्राचार्य का मन भी परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा मंत्र तंत्र छिद्रम कि हे विष्णु कि इसमें जो कुछ मंत्र में तंत्र में मुद्रा में जो दोष दिखाई देते हैं वो दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? जिसने आपका आश्रय ग्रहण किया है, कृष्ण भक्ति का संस्कृति स्वीकार किया है, आपके नामों का उच्चारण करता है, उसमें क्या दोष है? इस यज्ञ में कोई दोष नहीं था। यानी कि बलि महाराज की जो भक्ति है उसका प्रतिबिंब छाया शुक्राचार्य के प्रति प्रकाशित होने लगा। वो भी शुद्ध भक्त के समान ही बात करने लगे, बोले इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि बलि महाराज ने सब कुछ आपके लिए अर्पण किया है। यह कृष्ण से वरदान प्राप्त करने का लाभ, इसमें सब संतुष्ट हो जाते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं क्लेशाग्नि शुभदा। शुभदा यानी कि क्या? जब कृष्ण भक्ति करने से इसका परिणाम क्या होगा? केवल हम संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि सबको इसका लाभ होगा। रूप गोस्वामी कहते हैं जो सबको सारे दुनिया के लोगों को इसे आनंद प्राप्त होगा। यह है कृष्ण की पूजा करने से अक्षय भेंट की प्राप्ति होती है। और जिसको ऐसा अक्षय भेंट प्राप्त हुआ है वो क्या करेगा? कृष्ण भक्ति की जो संस्कृति है उसको पालन करने के लिए प्रयास करेगा। और यही भगवान यहाँ कह रहे यज्ञ दान तप न त्याज्यम, इनको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी अवस्था में भक्त होने पर भी हमें इनको प्रदान करना चाहिए। श्लोक एक कहावत है इंग्लिश में, जो पैसा है संपत्ति वो क्या है? वो मैन्यूअर के समान है, मतलब खाद्य के समान है, फर्टिलाइजर। और अगर आप उसको इकट्ठा करके रखोगे फिर वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो वो क्या करेगा? वो दुर्गंध फैलाएगा। फिर वो गाय का गोबर हो या फिर किसी कंपनी का आपने खाद खरीद किया हो वो दुर्गंध फैलाता है। लेकिन उस खाद्य को आपने बाढ़ दिया, बिखार दिया, इधर उधर फेंक दिया तो उससे क्या परिणाम होता है? वो फसल देने लगता है। वैसे ही पैसा है, उसको आप सड़ा दोगे बैंक में रखकर, एक करोड़ दो करोड़ इतना लाख उतना लाख, देखते देखते एक दिन हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे। तो क्या करेगा? दुर्गंध फैलाएगा। कैसा दुर्गंध फैलाएगा? फिर फोन आएंगे दाऊद का, या इनकम टैक्स के लोग आ जाएंगे, या आपके परिवार के लोग उसको हरण कर लेंगे। इसलिए कहावत है नीति शास्त्र में, सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी कंजूस है। क्यों? क्योंकि जैसे के वैसा बिना स्पर्श किए हुए मरने के उपरांत सब अपने परिवार के दूसरों को दे देता है बिना स्पर्श किए हुए, इसलिए सबसे बड़ा दानी है। इसमें व्यंग है, ये सच बात नहीं है लेकिन व्यंग से कहा जा रहा है। उसको दान देने का लाभ नहीं मिलता लेकिन जबरदस्ती से दूसरों को वितरण करना होता है। इसलिए देखो किस कारण के लिए युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे थे, ये संस्कृति है। हम किस चीज के लिए विलाप करते हैं? इन कलयुग में रहकर गर्व करते हुए इन कलयुग की चीजों को जब प्राप्ति नहीं होती उसके लिए विलाप करते हैं। लेकिन जो सुसंस्कृत लोग हैं वो किसके लिए विलाप करते हैं? जब वो संस्कृति का जब पालन नहीं कर सकते हैं उसके लिए विलाप करते हैं। और पांडवों का एक ही उद्देश्य था राज्य प्राप्त करने के लिए, क्यों उनको कोई राज्य प्राप्त करने की ही ईर्ष्या या अहंकार नहीं था, बल्कि धर्म को प्रतिष्ठापन करने हेतु, ऐसे साधु संतों को प्रोत्साहन करने हेतु, ऐसे लोगों को प्रयोजन करने हेतु, ताकि धर्म की वृद्धि हो जाए, धर्म बढ़े, हर जगह में लोग भगवान की भक्ति करें। केवल इस उद्देश्य से क्षत्रिय होने के नाते वे अपना राज्य को प्राप्त करने की इच्छा रख रहे थे। इसलिए स्वाभाविक था कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथी रहेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुव नीतिर्मतिर मम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है। और जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद को सुनते हैं, उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, उस संस्कृति को पालन करने का प्रयास करते हैं, केवल ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा, शांति होगी, नीति होगी और संपत्ति होगी। और इसलिए जब श्री कृष्ण और अर्जुन को अपने साथ में रखते हुए उनके दिव्य नामों का कीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहाँ संपत्ति होगी, वहाँ वैभव होगा। तो इसी उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ की जो संस्था है उसकी स्थापना की है। तो यहाँ भी निगड़ी में उसी उद्देश्य से यहाँ बनाया गया है। और जब हम यहाँ मंदिर हमने आप लोग जब बनाओगे सुंदर मंदिर, और तब भगवान अपने भक्तों के साथ अपने विजय पताका को फैलाते हुए इस सारे परिसर में, यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी केवल न्यूयॉर्क में, वहां का जो मंदिर है जितना अपना गर्भगृह उसे ही छोटा है, 26 सेकंड एवेन्यू बहुत छोटा सा जगह है। जैसे गोदावरी का उगम स्थान ब्रह्मगिरी जाओगे तो गोदावरी कैसे निकलती है, बूंद बूंद होकर, कोई स्वीकार नहीं करेगा कि गोदावरी यहां से निकलती है एक एक बूंद के रूप में। लेकिन जैसे वहां से अब निकलोगे पूरे दक्षिण भारत महाराष्ट्र भर गोदावरी फैली हुई है, वैसे ही गंगा वो जब निकलती है गोमुख से ऐसा लगता नहीं कि इतनी बड़ी नदी हो सकती है आगे जाकर, वैसे ही इस्कॉन की गंगा जब निकल रही थी वहां कहां से निकली हुई थी, एक बाहर के देश में जहां केवल पाथी चलता हो और छोटे से दुकान में, जो यहाँ छोटे से छोटे जो पान पट्टी का दुकान होता है उतना दुगना दुकान, ऐसे स्थिति में प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया। और वहां से बूंद बूंद होकर क्या हो गया, 400 उसके धाराएं खुल गए और उसमें ये नदी इतनी वेग से बह रही है और अब बहती जाएगी। पृथ्वी आचे यतो नगराधिकराम सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। लेकिन कहां से प्रारंभ हुआ था, इतने छोटे जगह से। और कैसे प्रारंभ किया था, हरिनाम के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे प्रभुपाद जी को अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं तो दान तप और यज्ञ, यज्ञ हरिनाम यज्ञ देना करना, दान यानी कि जिसके पास दान देने की शक्ति है या शक्ति नहीं है, यथा शक्ति अनुसार अगर हम इस सेवा को करते रहेंगे तो हम सुसंस्कृत भक्त बन जाएंगे, उससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और साथ साथ जो विद्या का
मुझे क्या लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी ने क्या कहा था,
पे बैठ गए, आपका भी लाभ होगा और दूसरों का भी लाभ होगा। तो हमें लाभ हुआ है और आप लोगों को लाभ हुआ है, तो लाभ को अपने पास न रखकर जितना हो सके उतना हमें दूसरों को एक भेंट देने के लिए प्रयास करना चाहिए। लोग दशहरा के दिन, मैं जब से भक्त बन गया मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कहा करते थे सोने ज्ञाने सोना सरकरा और पत्ता देते थे, परंतु यहाँ असली सोना है, सोनार गौरांग, गौरांग की भक्ति दूसरों को प्रदान करना, असली सोना गौरांग है और उनके जैसे रहो। ये दशहरा हम लोग वैष्णव लोग आज मनाते हैं और हमें साधारण पत्ता नहीं देना है। एक कलयुग ऐसा ही है, धोखा देने वाला है, पत्ता बांट रहे और उसको कहते हैं सोना, कागज बांट रहे और उसको कहते हैं पैसा, लेकिन भक्ति के साथ में ऐसा नहीं है। अब भक्ति प्रदान करो ताकि भक्ति बढ़ जाएगी। जितने लोगों को हम भक्ति प्रदान करेंगे हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने हमें अर्पण किया है, प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा हमें जो मिला हुआ है उसके बारे में बोलते रहना। जैसे एक बार हम लोग जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए गए थे और वहां एक पागल आया हुआ था, यहाँ के पागल किसकी चर्चा करेंगे, वो सब बेकार बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन वहां जगन्नाथपुरी में पागल था लेकिन फिर भी जगन्नाथ की स्तुति कर रहा था। उसको किसी ने कहा बंद कर अपना बकवास, ना मैं बंद नहीं कर सकता, और वो भगवान जगन्नाथ को देखकर फिर से स्तुति करने लगा। तो कौन अच्छा है, वो पागल अच्छा है कि हम लोग अच्छे? वो पागल होकर भी क्या कर रहा है, वो जगन्नाथ की स्तुति कर रहा है। और हम अपने आप को बहुत बुद्धि वाले समझकर हम यहाँ के जो पतित जो गिरने वाले हैं उनकी स्तुति करते हैं, तो भक्ति देखो कितनी महान है, पागल होकर भी महान है। अगर पागल नहीं है तो फिर और भी कितना अच्छा है। तो इस कीर्तन का दान करते हुए, इस गीता का ज्ञान प्रदान करते हुए हम सुखी बन सकते हैं। और जो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं उस विचार को हम पूर्ण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौर निताय की, गौर प्रेमानंद।